इस भट्टी का आरंभ हम एक कहानी से कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर बगीचा था और जिसका एक माली था। उस बगीचे में भांति भांति के फूल थे, इतने सुंदर सुंदर फूल थे कि लोग दूर दूर से उस बगीचे को देखने के लिए आते थे। एक एक फूल की सुगंध ऐसी थी कि जो भी वहां से गुजरता था वहां रुकना ही पड़ता था। और वो जो माली था वो भी ऐसा कर्मठ, पूर्ण लगन से, अपनी पूर्ण मेहनत से उस बगीचे की देखरेख करता था। एक एक पौधे को पानी डालता था, एक एक पौधे की, फूल की, पत्तों की रक्षा करता था, ध्यान रखता था। और ऐसा सुगंधित वो बगीचा। परंतु उसकी एक आदत थी, जब सभी फूल खिल जाते थे वो सभी फूलों को तोड़ता था, उनका इत्र बनाता था सुगंधित। और पता नहीं उसे क्या हो जाता था कि हर महीने के अंत में वो इत्र जाकर के एक नाली में बहा देता था। ऐसा ये जो माली है उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बुद्धिमान या मूर्ख? यहां बहुत सारे कुमार बैठे हैं और कुमारियां भी हैं, पर विशेष कुमारों के लिए। इस देह में जो जीवन शक्ति है इस देह में जो जीवन की ऊर्जा है, यदि कोई उसे ऐसे ही बांधे वह शक्ति जो कि ओज और तेज का निर्माण कर सकती है, वह शक्ति जो विकारों के अधीन होकर नष्ट हो जाए, ऐसे मालियों को क्या कहेंगे, होशियार या मूर्ख? जीवन में या हमारी देह में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, यदि महान संकल्प ना हो, यदि पवित्रता के संकल्प ना हो, यदि शक्तिशाली संकल्प ना हो, तो जीवन की यह ऊर्जा, जीवन की यह शक्ति ऐसे ही बह जाएगी। आज की मुरली में बाबा ने कुमारियों को याद किया है। क्या कहा कुमारियों से? सभी ने मुरली सुनी है। क्या कहा? एक लाइन आई है कुमारियों के लिए। क्या? कुमारियों का झुंड होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए हम। बाबा ने कहा ना कुमारियों के लिए, शादी नहीं करेंगे, दृढ़ता। हमारे इस ब्राह्मण जीवन का आधार, हमारे इस नव जीवन का आधार, हमारे इस कुमार जीवन का आधार, हमारे इस कुमारी जीवन का आधार, हमारे इस समर्पित जीवन का आधार क्या है? पवित्रता। इस यज्ञ में यदि संसार ने विरोध किया है तो किस लिए किया है? पवित्रता की वजह से। यदि ब्रह्मा ने गालियां खाई तो किस लिए गालियां खाई? पवित्रता की वजह से। पवित्रता एक शुभ्र कागज, उसमें अपवित्रता एक काला डाक। जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से स्वयं स्वयं को चेक करें, हमारी पवित्रता कैसी रही, किस तल की पवित्रता, किस स्तर की पवित्रता। बाबा बात कर रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, उसमें भी संकल्प भी पवित्र। एक है ब्रह्मचर्य और दूसरा है पवित्रता। पवित्रता का फाउंडेशन है ब्रह्मचर्य। पवित्रता बहुत बड़ा विषय है जिसको अगले दो दिनों में उसके संपूर्ण स्वरूप में हम देखेंगे वो क्या है, वो कैसा है, संपूर्ण पवित्रता क्या है, अपवित्रता किसे कहा जाता है, ब्रह्मचर्य का खंडन किसे कहा जाता है और क्यों इस पवित्रता का इतना महत्व है। मधुबन में किसी समय बहुत लंबा समय पहले ऐसे ही कोई अपवित्रता की बात हो गई थी, तब दादी प्रकाशमणि ने सभी मधुबन कुमारों की क्लास कराई थी। दादी ने सभी कुमारों से कहा था, तुम स्वयं को पुरुष क्यों समझते हो, तुम बाप की गोप गोपिया हो, स्वयं को गोपी समझो। पुरुषत्व से ऊपर उठ जाना और स्त्रीत्व से ऊपर उठ जाना, इस देह और देह के संबंध से ऊपर उठ जाना, देह देह की वासनाओं से ऊपर उठ जाना। दो तल पर जीवन जिया जाता है, एक देह के तल पर, एक आत्मा के तल पर। आत्मा के तल का जो जीवन है श्रेष्ठ जीवन है, ऊंचा जीवन है, संकल्पों में आनंद का जीवन है। एक दूसरा जीवन है देह के तल का, देह को देखना, देह में आनंद लेना, देह में आकर्षित होना, देह के भोग में भोगना। ऐसा विलासिता और भोगपूर्ण एक जीवन है और दूसरा जीवन है अध्यात्म की ऊंचाई वाला जीवन। दो मार्ग है, एक भोग का, एक विराग का, एक अध्यात्म का, एक संसार का, एक देह का, एक आत्मा का। मैं किस मार्ग पर चल रहा हूं स्वयं स्वयं से पूछना है। देह का जो मार्ग है, संसार को जो मार्ग है, विलासिता का जो मार्ग है, भोग का जो मार्ग है, उसमें जलना है। परंतु अध्यात्म का जो मार्ग है, आत्मा का जो मार्ग है, उसमें भी जलना है। परंतु एक मूलभूत भेद है, देह का जो मार्ग है, संसारिकता का जो मार्ग है, लौकिकता का जो मार्ग है, आत्मा जल जल कर जल जल कर जल जल कर एक दिन खाक हो जाती है, कुछ भी हाथ में नहीं। भोग भोग कर भोग भोग कर यह देह भी क्षीण होते जाता है और आत्मा भी निर्बल। एक वैज्ञानिक ने अपने संस्मरण में लिखा है, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, टूवर्ड्स द एंड ऑफ माई लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप थ्रू माई फिंगर्स, वो लिखता है कि सारा ही जीवन मैंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रिसर्च में लगा दिया, जीवन के अंत में अब मुझे लगता है जैसे जीवन मेरे उंगलियों से खिसक गया, हाथ में कुछ भी नहीं है, एक रिक्तता है, एक वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है हाथ में। ये मार्ग देह का है, जलने का मार्ग जो अंत में राख रह जाती है। दूसरा मार्ग है अध्यात्म का मार्ग, साधना का मार्ग, तपस्या का मार्ग, उसमें आत्मा जल जल कर उसमें भी जलना है, वो मार्ग भी अग्निपथ है। कंटका कीर्ण कंटकों से भरा हुआ, कांटे ही कांटे, शूल ही शूल बिछे हैं इस अध्यात्म के मार्ग में, परंतु जो इस मार्ग पर चलता है एक दिन वो भी जलता है, परंतु एक दिन क्या बन जाता है? हीरा। दो मार्ग, दोनों में आग, परंतु इधर राख है और इधर हीरा, ऐसा हीरा जो सारे विश्व को प्रकाशित करे। मैं किस मार्ग में जा रहा हूं, चेक करना है स्वयं को। अब तक का ये जीवन है कैसे बिता रहा हूं? तो आज जिस विषय पर हमें चर्चा करनी है वो विषय बड़ा ही साहित्यिक है, बहकते कदम और बिखरते ख्वाब। जो भी बाबा के पास आता है, जैसे ही जन्म लेता है, जैसे ही नवजन्म होता है, बहुत सारे ख्वाब लेकर आता है। याद करो अपने उस दिन को, बचपन के वो दिन, जिसे बाबा कहते हैं भुला न देना, अपने उस आध्यात्मिक वैश्यशो काल को, वो आध्यात्मिक बचपन को याद करो, स्पिरिचुअल इन्फेंसी, स्पिरिचुअल चाइल्डहुड, जब हम बाबा के पास आए थे, कौन से ख्वाब थे हमारे, किन उमंगों के साथ बाबा के पास आए थे, सभी को बताना है, केवल हम बोलते नहीं रहेंगे। क्या सोचकर आए थे बाबा के पास? नर से नारायण बनेंगे, वो तो बाद में पता चला आने के बाद। और सुख शांति की तलाश में आए थे, और किस लिए आए थे बाबा के पास? बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए, और बताओ, भरपूर होने के लिए, और किस लिए आए थे? ज्ञान लेने के लिए, और किस लिए आए थे? या फिर जब आए थे, बाबा का बन गए थे, तो मन में क्या उमंगे थी? वो पहला छह मास, वो पहले छह मास या एक साल, क्या हमने सोचा था कि हम क्या करेंगे आगे जाकर, वो बताओ। जब नए नए थे तो मन में क्या ख्वाब थे, कौन से स्वप्न थे, कौन सी उमंगे थी, कौन सा उत्साह था, क्या करेंगे? बाप जैसा बनेंगे, और बाप के मददगार बनेंगे, और हाथ और साथ 50 पॉइंट बताओ, कितनी? 50। हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और अपने कल्याण के साथ सारे विश्व का भी कल्याण करेंगे। ये सारे हमारे मन में संकल्प थे जब हम बाबा के पास आए, और यज्ञ का रक्षक बनेंगे। कितनी सुंदर बात है, इस यज्ञ को जैसे ये किला है, दुर्ग है, गढ़ है एक, इस गढ़ से, इस किले से एक भी आत्मा यदि बाहर जाती है, दोष किसका है? किसका दोष है? उस आत्मा का या हमारा? या कह देंगे उसका भाग्य था, वो चला गया। हम एक एक यज्ञ रक्षक है, शायद उसने हमें ही देख लिया हो, हमारे ही अलबेलेपन के कारण वो चला गया, शायद हमारी कोई ऐसी अपवित्रता की चलन थी, शायद हमारे ही कोई ऐसे अप्रगट संकल्प थे जिस वजह से वो यज्ञ छोड़कर चला गया। हम यज्ञ रक्षक है, फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी, इस यज्ञ को ऐसा मजबूत किला बनाना है। कैसे बनाएंगे? अपने श्रेष्ठ संकल्प से, अपनी श्रेष्ठ तपस्या से। जरूर तुम तपस्या कम कर रहे थे, जरूर कोई ना कोई विकार का संकल्प मन में आंदोलित हो रहा था, वही उस तक पहुंचा और वो यहां से गया। इस किले से कोई भी बाहर नहीं आना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, जब तक तुम इस किले में हो, जब तक तुम इस ब्राह्मणों के संगठन में हो, जब तक इस प्रभु परिवार में हो, तब तक सुरक्षित, क्योंकि बाहर माया की आंधी चल रही है। इस किले से एक कदम भी बाहर निकाला तो माया की चक्री, कल के मुरली में था ना, माया की चक्री, माया तैयार खड़ी है। इसके लिए ये परिवार, ये प्रभु परिवार, ये यज्ञ, ये किला, इसके हम रक्षक हैं। हमारे चलन, हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे स्वभाव कितने श्रेष्ठ होने चाहिए। कोई के मन में यह संकल्प ना हो कि यहां से डिस्टर्ब होके कोई जाए। कल का स्लोगन था ना, वो सेवा जो स्वयं को और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, सेवा नहीं, क्या है? बोझ। किसके सिर पर? हमारे भी और उसके भी। इसके लिए हम इस यज्ञ में आए थे, यज्ञ रक्षक बनने, हमें यज्ञ भक्षक नहीं बनना है। गुप्त पाप की बात की थी कल बाबा ने मुरली में, इस यज्ञ की हर चीज यज्ञ की है, भगवान की है। संकल्प भी नहीं करना कि यहां से कोई चीज इधर से उधर, उधर से इधर। धूतीपना आज के मुरली में शब्द है, एक किसी दूसरे अर्थों से बाबा ने प्रयोग किया है। तो हम यदि यज्ञ रक्षक है तो हमें यज्ञ की रक्षा करनी है, यज्ञ की एक एक वस्तु की रक्षा करनी है। और इस तन को, इस मन को और इस जीवन के धन को इस यज्ञ सेवा में सफल करना है। वैसे भी जो हाथ में है एक दिन चला जाना है, यहां सफल करना। तो हमारा लक्ष्य था यज्ञ रक्षक बनना। क्या मैं बना हूं? कौन सा ख्वाब लेके आए थे? यज्ञ रक्षक बनने का, या कुछ और बना हूं? यज्ञ के लिए सबसे बड़ा सहयोग है हमारी स्थिति, हमारा योग, हमारे संकल्प। आज यज्ञ के पास स्थूल सेवाधारी बहुत है, परंतु यज्ञ को सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है? सूक्ष्म सेवाधारियों की, मनसा सेवा की। यज्ञ के हर कार्य को निर्विघ्न रूप से सफल करने के लिए हमें अपने संकल्प भी इतने श्रेष्ठ बनाने पड़ेंगे। और क्या ख्वाब लेकर आए थे यहां पर? एक तो बता दिया यज्ञ रक्षक, और कौन सी उमंगे थी? स्व के लिए बताओ, स्व परिवर्तन और संस्कार परिवर्तन, और भाइयों की तरफ से कोई भी प्रश्न, कोई भी उत्तर दो, सभी राइट है। जो सुख की अनुभूति हमने की है वो सभी को कराए है, कितना श्रेष्ठ संकल्प है। जो हमने पाया है सभी को देना है, जो हमको मिला है वो सबको लुटाना है, उसको वो शास्त्रों में दिखाया ना, रामानुजाचार्य अद्वैत फिलॉसफी के जो प्रवर्तक थे, विशिष्ट अद्वैत के, उनके गुरु ने उन्हें एक मंत्र दिया ओम नमो वासुदेवाय नमः और कहा कि किसी को भी मत देना। वो अपने गुरु के पास 17-18 बार गए और वापस आए, मंत्र नहीं दिया, 18वीं बार दिया और कान में कहा ये किसी को नहीं देना। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि गुरु ने कहा कि जिसे ये मंत्र मिल जाएगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। तो उन्होंने क्या किया, दिखाया है उनके जीवन में, गए और मंदिर के छत के ऊपर खड़े हुए और जोर जोर से सबको सुनाया वो मंत्र। गुरु बहुत नाराज हुए और आकर उन्होंने कहा ये तुमने क्या कर दिया, मैंने इसके लिए तुम्हें थोड़ी ये मंत्र दिया था, इसके लिए तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप है ये। रामानुजाचार्य ने एक बात कही, यदि इस मंत्र से असंख्य आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है और मुझे नरक यातना, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो जो हमने पाया है वो वहीं रुक नहीं जाना है। सबको, जो जिन्हें नहीं मिला है, ऐसे अनमिले जो लोग हैं, जिनको अनमिला है उनको ये मिलाना है। सबसे बड़ी है सेवा, सबका प्रभु से मिलन कराना है। और कौन सी उमंग ये थी हमारी, स्व के लिए बाबा ने जो श्रीमत दी है उसका पालन करना। आज की मुरली में भी है मनमत नहीं श्रीमत। और भाइयों की तरफ से कौन से ख्वाब थे, कौन से स्वप्न थे, कौन से संकल्प थे, कौन सा लक्ष्य था हमारे जीवन में, याद करो अपने उन दिनों को जब हम नए नए आए थे। क्या सोचा था हमने, क्या करके दिखाएंगे एक साल में 18 जनवरी तक? मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र बनेंगे, यह संकल्प था। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आज की मुरली में भी है ना, हम छोड़ेंगे नहीं, बाप के बाप से मिलके रहेंगे। ये निश्चय हुआ और झट भागा, हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो संकल्प था संपूर्ण पवित्रता का। वातावरण इस कलयुग के वातावरण में कहीं वो पवित्रता खंडित तो नहीं हो रही है, चेकिंग करनी है। और कौन सा संकल्प था, कौन से ख्वाब थे? आत्मोन्नति करना, अध्यात्म में उन्नति करना, बहुत आगे बढ़ना, आत्मा के संस्कार धारण करना, आत्माभिमानी स्थिति। और इधर से कुछ भी नहीं उत्तर आ रहे। क्या करना? पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, व्यक्तित्व में परिवर्तन करना। हमारे अंदर जो भी अवगुण है, जो भी दोष है, फॉल्ट्स है, खामियां है, वो मिटाना। और पावरफुल बनना, शक्तिशाली बनना, सेल्फ रियलाइजेशन से एक लक्ष्यता, सर्वशक्तियों को अपने अंदर धारण करना, स्पिरिचुअल पावर्स को डेवलप करना। क्या हमने किए हैं? इतना आत्मा शक्तिशाली बनी है? छोटा सा विघ्न आ गया, छोटा सा पेपर आ गया और हम मुरझा गए, ऐसी हमारी स्थिति तो नहीं है? तब तो कुछ और पेपर थे अज्ञान काल में। ब्राह्मण बनने के बाद ब्राह्मणों का परिवार ही एक एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण एक एक पेपर है, ये तो सभी ने अनुभव किया होगा। हमारे लिए एक एक ब्राह्मण क्या है? पेपर। क्यों? क्यों? ब्राह्मणों के हिसाब किताब किसके द्वारा चुकतू होने हैं? ब्राह्मणों के द्वारा चुकतू होने हैं। कभी तुम भी किसी देश के राजा हुए होंगे, किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण किया, उस राजा को हराया, सारी प्रजा विध्वस्त कर दी। कभी तुम भी साहूकार होंगे, किसी गरीब किसान की जमीन हड़प ली, उसका परिवार तड़प तड़प के मर गया, तुम्हारे सिर पर 63 जन्मों के पापों का बोझा है, मूल्यों में आता है। तो वो जो किसान था और वो रो राजा था और वो जो प्रजा थी जो कि अनाथ हो गई थी, वही सारे कहां गए हैं? हमारे आसपास। हमारा ये जो फ्रेंड सर्कल है, किसका फ्रेंड सर्कल है? तुम्हारे जन जन के शत्रु। सभी ब्राह्मण 84 जन्म साथ साथ रहे हैं, सभी के साथ हमारे कुछ ना कुछ हिसाब किताब है। इसके लिए नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं, जो है उन्हें ही अपनी श्रेष्ठ स्थिति से चुक्त करने हैं, फ्रेश बॉन्डेजेस क्रिएट नहीं करने हैं। यहां पर तन मन धन की सेवा से उन सभी बंधनों से मुक्त होना है। वो सारे हिसाब किताब की भी एक यात्रा है, जैसे जीवन की यात्रा। एक तो है, तीन प्रकार की यात्राएं हैं। एक है जीवन की यात्रा, जन्म से लेकर मृत्यु तक। दूसरी है ब्राह्मण जीवन की यात्रा, बाबा का बनने से कब तक? बीच में छोड़ के तो नहीं जाते हैं ना, अंत तक। और तीसरी एक यात्रा है, वो यात्रा है हिसाब किताब की यात्रा। वो किसी व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों के साथ हो सकती है। वो ऐसे कड़े हिसाब किताब है कि हो सकता है हमने उसे जन्म जन्म बहुत सताया है, अब बिना हिसाब किताब पूरे किए कोई भी आत्मा ऊपर नहीं जा सकती। तो हर तरह से वो परीक्षा लेगी। कभी तो वो विरोध बनकर आ सकती है, कभी तो वो षड्यंत्र बनकर आ सकती है, कभी तो वो ग्लानी बनकर आ सकती है, कोई भी रूप वो धारण कर सकती है। इसके लिए यहां पर जरूरत है नो रिएक्शन, धैर्य की परीक्षा होगी। ये हिसाब किताब किसकी परीक्षा है? हमारे धैर्य की परीक्षा है। भगवान का एक टाइटल है धैर्य का सागर। उसका धैर्य देखो कितना भाई, कब से सिखा रहा है, अब तक सिखा ही रहा है। हर बार मुरली चलती है, वो होमवर्क देता है, बहुत कम करके आते हैं होमवर्क, पर कभी उसने कहा कि जिन्होंने होमवर्क नहीं किया आउट? अगर वो बोल दे तो केवल वही हॉल में रहेंगे जिन्होंने होमवर्क किया है, तो क्या होगा, हॉल खाली? वो धैर्य का सागर है, हमारे धैर्य की परीक्षा है सारे ही हिसाब किताब। इस संसार में जो भी महान आत्माएं हुई है, चाहे पैगंबर, वो जीसस क्राइस्ट जिसको आज एक तिहाई दुनिया मानती है, वो जब था साकार में, तीन आदमी भी तैयार नहीं थे उसको स्वीकार करने के लिए। वो जब था साकार में और उसके सिर पर वो सूली लेकर चल रहा था, तीन बार गिरा वो रास्ते में, उस महल से लेकर तो उस गोलगोथा तक जहां उसे सूली चढ़ाई जाने वाली थी, तीन बार गिरा। एक ने भी सामने आकर नहीं कहा कि मैं तुम्हारा ये उठाता हूं वो सूली, किसी ने नहीं कहा। फॉक्सेस हैव होल्स, बर्ड्स हैव नेस्ट, बट दिस सन ऑफ मैन हैथ नॉट वेयर टू ले हिज हेड। वो लिखता है कि सभी के लिए यहां सुरक्षा है, घर है, पर मेरे लिए इस धरती पे कोई घर नहीं है। आज वो जब है नहीं, वो मर गया, उसके बाद लोगों ने उसकी प्रार्थना पूजा चालू की, पर जो था तो एक पानी पिलाने के वाला भी नहीं था उसको। ये संसार का दस्तूर है, इस संसार में हमें रहना है। इसके लिए तीसरी यात्रा कौन सी है? हिसाब किताब की यात्रा। इस यात्रा को भी सुखद बनाया जाए, इस यात्रा को भी बहुत ही स्वीट, ताकि हिसाब किताब भी चुकतु हो परंतु हम अप्रभावित रहे। ये तीसरी यात्रा है। और क्या ख्वाब है? जब आए थे तो कौन से ख्वाब थे हमारे मन में? स्व के लिए, स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बाबा का, वो विश्व के लिए, स्व के लिए, बुद्धि को पारस बनाना, स्वच्छ बुद्धि बनाना, पवित्र बुद्धि बनाना और अष्ट शक्तियां धारण करना और सर्वगुण संपन्न बनना और जो जो बाबा चाहता है वही करना। कल की मुरली में यह बात आई है, जो बाप के दिल की बात वो तुम्हारे दिल की बात, दोनों के दिल की बात एक ही है। फिर यह अंतर क्यों? फिर सब नंबर वन क्यों नहीं? फिर सब राजा क्यों नहीं? फिर सब राज्य में आने वाले क्यों? बहुत सारी बातें इसकी चर्चा कल करेंगे। एक बहुत श्रेष्ठ संकल्प सभी के मन में था, वो था हमें तपस्या करनी है। कौन सा संकल्प था जब बाबा के पास आए तो? हमें महान योगी बनना है, श्रेष्ठ तपस्या करनी है, अपने तप के बल से इस विश्व को पावन बनाना है, यह संकल्प था। परंतु इस ब्राह्मण जीवन में चलते 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 शायद वो संकल्प कहीं खो गया। आज इस भट्टी में फिर से वो सारे जो स्वप्न थे जो कि बिखर गए, उन्हें फिर से जागृत करना है, फिर से स्वयं को याद दिलाना है कि हम इस यज्ञ में बाबा के पास क्यों आए थे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, आत्म केंद्रित स्थिति में, और बाबा के पास जाकर फिर बाबा से कहो कि बाबा हम ये संकल्प के पास साथ लेकर तुम्हारे पास आए थे, आज फिर से वो सारे संकल्पों को हम रिवाइज करते हैं और दृढ़ता से प्रतिज्ञा करते हैं कि वैसा बनकर दिखाएंगे।
Thank you।
जो जो हमने स्वप्न देखे थे, जो जो हमारी इच्छा थी हम बने, शायद इस सफर में कई हम खो गए, भूल गए उनको, उनको फिर से याद करना ये विधि है उनको साकार करने की। दूसरा पहलू है कहां हम भटक गए, ये कदम कहां विचलित हो गए, कहां बहक गए हम। अब मुख्य विषय ये भटकना है, तो ऐसी कुछ बातें हम निकालेंगे 7-8 कि जहां हम भटक गए, ये जो कदम है जिन कदमों में पदम होने चाहिए थे, शायद ऐसा कुछ हुआ कि कुछ भी हाथ में नहीं रहा। तो ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन में आ गई, और तीव्र पुरुषार्थ का जो मार्ग था, तपस्या का जो मार्ग था, साधना का जो मार्ग था, बाप समान बनने का जो मार्ग था, उस मार्ग से हम हट गए। वो कौन सी बातें हैं, ऐसी 7-8 बातें हम निकालेंगे। कौन सी वो बातें हैं, कुमारों की तरफ से कौन सी साधन, उससे भी पहले अलबेलापन और व्यर्थ संकल्प और संग दोष, यहां से चालू करते हैं। कौन सा संग दोष? कौन सा संग दोष? वो तो बहुत सूक्ष्म है। हम जिन आत्माओं के संपर्क में रहते हैं वो कौन सी आत्माएं हैं? एक यज्ञ में दो ग्रुप है, एक है जिन्हें ये स्मृति है समय कौन सा चल रहा है, एक है जिन्हें ये पता है ये तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है और कर भी रहे हैं। दूसरा एक ग्रुप है जो कि विस्मृति में है, उन्हें ये पता नहीं है ये समय कौन सा है। ज्ञान की रीति से पता है पर अनुभव की रीति से नहीं, प्रैक्टिकल की रीति से नहीं, इसके लिए कहीं ना कहीं जैसे खो गए। हमारे इस यज्ञ में सेवा कितने नंबर पर है? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, त्याग, तपस्या और सेवा। सेवा तो करनी ही है, सेवा प्राण है ब्राह्मणों का, परंतु कितने नंबर पर है? वो लास्ट नंबर पर है। वास्तव में श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जो सेवा की जाती है वही सेवा है, अन्यथा वो सेवा केवल टकराव का कारण है, केवल टकराव, केवल डिस्टर्बेंस, केवल विघ्न। अगर हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में नहीं है, कोई यदि अमृत वेला छोड़कर सेवा करता है सफलता मिलेगी? कोई सोचता है आज की मुरली नहीं पढ़ते हैं, कुछ और करते हैं, सफलता प्राप्त होगी? ये खेल इतना आसान तो नहीं है ना। हमें याद है एक भाई, बहुत समय पहले की बात है, समर्पित भाई, बहुत सेवा की, परंतु केवल सेवा की, सुबह से लेकर रात तक भागदौड़, भागदौड़ भागदौड़ भागदौड़। एक दिन जब बीमार पड़ा और फिर उसे देखने वाला कोई नहीं था, वो भी वैसे तो था ही पर वो देखने वाला कहीं चला गया था दो दिन। उस दो दिन में हमने उनकी स्थिति देखी, इतने वो हिल गए, यहां तक सोचने लगे कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है, अगर मैंने शादी कर ली होती तो आज बीवी होती बच्चे होते, यहां तक संकल्प चलने लगे। बाद में हमने देखा उसी दुख की अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ा, बहुत पीड़ा में। किसने? जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया था इस यज्ञ में। परंतु एक भूल हो गई कहीं ना कहीं, केवल सेवा 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 सेवा। वो भी सेवा कौन सी? स्थूल सेवा। उसमें मन में संकल्प कौन से है क्या पता? बाबा को ऐसी सेवा नहीं चाहिए। बाबा चाहे तो किसी भी करोड़पति लखपति आत्मा को टच करा दे और सब कुछ एक सेकंड में बना दे, परंतु बाबा ने कहा है परमात्मा का ये बूंद बूंद से ये तालाब भरने वाला है, परमात्मा बूंद बूंद से। इसके लिए जो सेवाएं हम कर रहे हैं उसमें हमारी स्थिति कैसी है? यदि वो अमृत वेला छोड़कर और ज्ञान का मनन चिंतन अध्ययन चर्चा, कल रात में हमने थोड़ी चर्चा की थी इस विषय में, वो सब छोड़ के अगर कर रहे हैं, एक अव्यक्त वाणी में बाबा के महावाक्य है, शायद 80 के दशक की वो मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है कितनी भी सेवा की भागदौड़ करो, यदि निमित्त भाव नहीं है, यदि निर्मल वाणी नहीं है, यदि निर्मल स्वभाव नहीं है, तो केवल 5% जमा होगा, ओनली 5%। इसके लिए सेवा तो करनी ही है, परंतु श्रेष्ठ स्थिति के साथ, साधना भी होती रहे, तपस्या भी होती रहे, फिर सेवा स्वतः ही होगी। चरणों में आकर आत्माएं सब कुछ डालकर जाएगी, हमें किसी के पीछे जाना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही आएगी आत्माएं। हमने ये देखा है जिस सेवा केंद्र पर बहनों की या वहां के भाई बहनों की, उस परिवार की पवित्रता बहुत अच्छी होती है, वहां कुछ करना नहीं होता है, स्वतः ही सारे कार्य होते हैं, स्वतः ही। तो किन आत्माओं का हम संग कर रहे हैं? हमारा संग तीव्र पुरुषार्थियों का संग हो। किसका संग हो? जो जागरण में जी रहे हैं, जागृत अवस्था में है। नींद भी तीन प्रकार की नींद होती है, एक तो स्थूल, दूसरी अज्ञान की नींद, और तीसरी और एक नींद होती है जिसमें अधिकांश ब्राह्मण सोए हैं। वो कौन सी नींद है? कौन सी नींद है? विस्मृति की नींद। हमें याद है दिल्ली के जो आशा बहन जी है, वो एक बार बहनों को एक चित्र दिखा रहे थे जिस चित्र में एक ब्रह्मा कुमारी कुंभकर्ण के कान में जल डाल रही, अमृत डाल रही है। सबने देखा है ना ये चित्र? तो उन्होंने बहनों से कहा इस चित्र को देखो और बताओ इसमें क्या है। बहनों ने कहा इसमें क्या है? ये वही है, कुंभकर्ण सोया हुआ है और ब्रह्मा कुमारी अमृत डाल रही है और इधर से बह रहा है, ये चित्र तो देखा हुआ है सभी ने, यही तो कोर्स में बताते हैं। दीदी ने कहा ध्यान से देखो, उस कुंभकर्ण को बैच लगा हुआ है, उस कुंभकर्ण को विशेष चित्र वो बनाया गया था, उस कुंभकर्ण को बैच था। कौन थे वो कुंभकर्ण? कहीं वो हम तो नहीं? स्वयं को देखना है, मैं सोया हुआ हूं या जगा हुआ हूं। अगर मैं गिर रहा हूं, कदम लड़खड़ा रहे, बहक रहे, शायद संभवतः मैं सोया हूं, विस्मृति में हूं। ज्ञान तो बहुत है परंतु केवल कोर्स कराना, प्रोग्राम करना, सेवा करना, सेमिनार करना, कॉन्फ्रेंस करना, कल की मुरली में यह पॉइंट आया है, आएगा, यह तो है पर इसमें मेहनत का अनुभव है। फिर यदि उमंग उत्साह नहीं है तो ये सारा जो विस्तार है यह स्वतः ही होगा, हमें करना नहीं पड़ेगा अगर श्रेष्ठ स्थिति है तो। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा था? कदमों के बहकने का कुसंग। संग किसका करना है? सबसे पहले तो एक बाप का संग, दूसरा हम स्मृति से किसका संग करते हैं वो महत्वपूर्ण है। स्थूल संग से भी ज्यादा स्मृति से किसका संग है? रहते यहां है परंतु मन लगा है किसी दूर, कोई आत्मा है उसमें, वो संग व्यक्ति का संग है। लगाव है, अटैचमेंट है, वहां दुख होगा। जहां जहां आसक्ति है और जहां जहां लगाव है, परिणाम दुख, चाहे लौकिक में कोई हो चाहे अलौकिक में कोई हो। अलौकिक बंधनों से भी मुक्त होने के लिए बाबा ने कहा है, इस परिवार में भी किसी में नहीं फंसना है, कुमार और कुमारी, कुमार ही रहे और कुमारी ही रहे, इस एक संबंध के अतिरिक्त बाकी जो भी संबंध है सब में बहुत बड़ा धोखा है, खतरा है। किसी को भी बहन बनाने का प्रयत्न मत करना और किसी को भी भाई बनाने का प्रयत्न मत करना, विशेष भाई और विशेष बहन। बहन को बहन ही रहने दो और भाई को भाई ही रहने दो। विशेष यदि बनाया तो माया शुरुआत होगी वहां से। योगी के सामने माया योगी के रूप में आएगी, ज्ञानी के सामने माया ज्ञानी के रूप में आएंगी, बलवान के सामने बलवान के रूप में, महावीर के सामने महावीर के रूप में। माया सीधा नहीं आएगी, सीधा आक्रमण नहीं होता है माया का, क्योंकि ब्राह्मण तो पहचान जाएंगे ना। दिखाया है ना शास्त्रों में, विश्वामित्र जो तपस्या कर रहा है उसकी तपस्या किसने तोड़ी? मेनका से भी पहले। और एक बात है, इंद्र पहले रंभा को भेजता है, वो सीधा आक्रमण करती है उसको, वो शाप देकर पत्थर बना देता है। इसके लिए मेनका अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करती है, वो उसके ऊपर सीधा आक्रमण नहीं करती है, वो रहती है वहां पर, उसकी सेवा करती है, उसके लिए फल रखती है, उसकी तपस्या में मदद करती है, उसके लिए जल लाती है, तब कहीं जाकर वो प्रभावित होता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी माया का डायरेक्ट आक्रमण नहीं होगा। कैसे होगा? इतना सूक्ष्म कि जब नीचे गिर जाओगे, आज की मुरली में है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। जब वैसे चकनाचूर हो जाओगे तब कहीं पता चलेगा कि कहीं कोई ना कोई भूल हुई है। इतना सूक्ष्म रूप है माया का। जगदीश भाई जी ने अपनी किताब में कहीं लिखा है कि बाबा को जानना तो बहुत कठिन है, भगवान को पहचानना बहुत कठिन है, पर उससे भी कठिन एक और कार्य है, वो कौन सा? माया को जानना। माया अपने सिर पर ऐसे कभी भी लिख के नहीं आती है कि मैं माया हूं। वो अपना रूप बदले कर बैच लगाकर, श्वेत वस्त्र धारण कर, इन आभूषणों में आती है, तो कैसे पता चलेगा? माया को पहचानना ये माया है और उससे मुक्त होना। तो पहला था कुसंग, दूसरा है साधन। साधन एक बहुत बड़ी माया है। अभी अभी कुछ समय पहले जयंती बहन जी का क्लास हुआ था हॉस्पिटल में, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लंदन में एक भाई है बहुत ही अनन्य, जिसने अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सेवाओं के लिए वो निमित्त बना हुआ भाई, अचानक एक दिन वो भाई आता था, बड़ा उदास लगता था, वो रुचि वो इंटरेस्ट कम हो गया, सेवाओं में भी कम हो गया, बाकी चीजों में भी कम हो गया, पर आता जरूर था, अनन्य, बहुत पुराना, 50 साल हो गए होंगे ऐसा। अचानक सब कुछ कम होने लगा, तो उन्हें पूछा एक दो बार क्यों क्या हुआ, उसने नहीं बताया। फिर विशेष किसी बहन को निमित्त बनाया, उसके पास जाकर उसके साथ बैठे, काउंसलिंग करे, तो उसने एक बात बताई कि हां, एक बुरी आदत लग गई है उसे। उसने कहा कि सारे दिन भर सेवा सेंटर में और उसका अपनी ड्यूटी, और जब रात में उसे एक नई आदत लग गई, वो थी वीडियो देखने की यूट्यूब पर, और वो देखते देखते उसको कभी 10, कभी 11, कभी 12 भी बज जाते थे, और धीरे धीरे ये सारी चीजें जहां आ जाती है वहां ज्ञान और योग का इंटरेस्ट स्वतः ही कम हो जाता है। साधन, ये जो साधन दिए गए हैं केवल और केवल सेवा के लिए है, नहीं तो माया का सबसे बड़ा रूप ही यह है, कहां से कहां पहुंचा देगी। इंटरनेट, नाम ही इंटरनेट है, अंतरजाल, वो जाल है एक जबरदस्त, उसका उपयोग केवल और केवल सेवा के लिए हो, एक क्लिक और आत्मा यहां से तो सीधा नरक, नरक की यात्रा करने के लिए एक क्लिक की आवश्यकता है बस। मोबाइल, इंटरनेट, जितने सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, ये साधन मात्र है, वो भी सेवा के लिए। इनका प्रयोग ये छोड़कर, ज्ञान और योग के लिए छोड़कर और किसी भी बात के लिए किया जाता है तो उसमें एक जबरदस्त खतरा है, वो है फैमिलियरिटी का। अभी अभी डॉक्टर चंदा बैठे थे यहां पर, है गए डॉक्टर चंदा, हाँ डॉक्टर चंदा हमारे साथ हॉस्पिटल में बहुत पहले सेवा करते थे। हमारे ही साथ एक और भी डॉक्टर था जो कि इतना तीव्र पुरुषार्थी था कि उसको देखकर सब लोग को लगन, बहुत उमंग उत्साह आता था, और हमारी सुबह की जो क्लास चलती है मधुबन में, उसने प्रतिज्ञा की थी सबके सामने कि बस अभी मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं और आते ही समर्पित। उसको पोस्ट ग्रेजुएशन मिला और वो गया। हमको याद है वो शाम बाबा आ रहे थे, 18 जनवरी का दिन था, शाम का समय था, उसका 6:30 बजे की फ्लाइट ट्रेन थी, इधर बाबा आ रहे और वो जा रहा है, और उसने प्रतिज्ञा कर गया था वो कि मैं बस गया और समर्पित होकर आ जाऊं, आने पढ़ाई करूंगा और आ जाऊंगा। उसे ऑर्थोपेडिक्स मिला था, MS ऑर्थो। वो गया, वहां पर भी उसने अच्छा पुरुषार्थ किया, पर माया ने ऐसा आक्रमण किया कि उसे भी पता नहीं चला क्या हुआ। धीरे धीरे फेसबुक पर किसी से पहचान हुई, दोस्ती बढ़ी। ऐसा नहीं कि वो अज्ञानी है, वो भी ज्ञानी, वो बहन भी ज्ञानी, ये भी ज्ञानी। ज्ञानी अज्ञानियों की तरफ आकर्षित नहीं होते, ज्ञानियों की तरफ आकर्षित होते। वो दोस्ती बढ़ी, वो इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी वो फैमिलियरिटी बढ़ी पहले एक था, अब दो हो गए। माया का आक्रमण इस कुमार और कुमारी जीवन में कहां से आ जाए बता नहीं सकते। कब कौन सा संकल्प उत्पन्न हो जाए। आत्मा ने जन्म जन्म काम विकार को ही भोगा है। कहीं ना कहीं अवचेतन में छिपा है। उसको तो बस एक चिंगारी की आवश्यकता है। वो चिंगारी कोई मूवी हो सकती है, कोई पोस्टर हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आज से इस भट्टी में यह प्रतिज्ञा करनी है, यदि कोई आत्मा इस तरह की संसार की जो चीजें हैं, अश्लील साहित्य, अश्लील चलचित्र, स्टॉप करना है स्वयं को। स्टॉप माना स्टॉप। इस संसार में बहुत अच्छे अच्छे धारावाहिक भी है। कई लोग कहते हैं रिलीजियस मूवीज, परंतु इन धार्मिक मूवीज में काम करने वाले वो एक्टर वो एक्ट्रेस, उनका आध्यात्मिक चरित्र क्या है? व्हाट इज देयर स्पिरिचुअल कैलिबर? किस लिए वो काम कर रहे हैं? ताकि विश्व का कल्याण करे? किस लिए काम कर रहे हैं? क्या उनका लक्ष्य इतना श्रेष्ठ है कि हम सारे विश्व के सामने कोई आदर्श स्थापन करें? उनके जाकर उनके जीवन को देखो तो क्या पता है क्या हो रहा है। इधर श्री राम और इधर श्री सीता और उधर कुछ और। तथा कथित धार्मिक चलचित्र, रिलीजियस मूवीज, सीरियल्स, ये सारा ही एक जंजाल है, एक जाल है, एक स्ट्रेटजी है, एक षड्यंत्र है, और ब्राह्मणों के लिए संपूर्ण वर्जित। ब्रह्मा बाबा अपना उदाहरण सुनाते हैं साकार मुरलियों में, कौन सा क्या उदाहरण सुनाते हैं? कौन सा? सौभाग्य सुंदरी। उस समय की वो मूवी, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। उसमें भी हो सकता है वो जो स्त्री है वो स्त्री नहीं होगी, पुरुष ही स्त्री बना होगा। वो देखकर भी क्या हो गया? बाबा का तो कहते हैं ना, बाबा का वैराग छू मंतर हो गया। वैराग था वो। 1936 के पहले की मूवीज ब्लैक एंड व्हाइट, वो कौन से कपड़े पहनते होंगे? और आज के युग की जो मूवीज है, स्टॉप माना स्टॉप। अगर ये कर दो तो स्वतः ही संकल्प उत्पन्न होंगे। साधना कैसी की जाए, तीव्र पुरुषार्थ कैसा किया जाए? जो टीवी में हमारा समय जा रहा है वो अध्ययन में जाएगा, चिंतन में जाएगा, मनन में जाएगा। जो सीरियल देखने में समय जा रहा है, जो लोग सीरियल वो छोड़ते ही ऐसे स्थान पे कि आगे क्या होगा, उसकी उत्सुकता बनी रहती है। एंड ही वहां पर करेंगे कि आगे क्या होगा, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। ये दौड़ है। एक लियो टॉल्स्टॉय नाम का एक ऑथर है, रूस का हुआ था, उसने एक कहानी लिखी है बहुत सुंदर। वो कहानी सुनाने के बाद हम एक ब्रेक लेंगे 10 मिनट के लिए। उन्होंने लिखा है, एक व्यक्ति रहता था बहुत ही गरीब निर्धन किसान। एक सन्यासी एक दिन उसके पास आया और उस सन्यासी ने कहा कि तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वहां जाना चाहिए, समारिया, वो दूसरा गांव है, वहां पर जमीन मुफ्त में मिलती है। वो व्यक्ति कहता है अच्छा। वो परिव्राजक तो निकल के चला जाता है, परंतु ये जो गरीब किसान है सोचता है कि मैं सब कुछ बेच कर जाऊं और वहां पर जो जमीन है वो जमीन वहां पे खरीदूं दूर देश में। और वो उस गांव में पहुंचता है और वहां के लोगों को पूछता है कि यहां की जमीन का क्या भाव है। वो लोग कहते हैं जमीन का भाव, ये जमीन मुफ्त है, सुबह से लेकर ये जो बिंदु है यहां से तुम जितना भागो, जितना भागोगे उतनी जमीन तुम्हारी। रात भर तो वो सो नहीं पाता है, सोचता है कितना भागू और कितना भागू। सुबह सुबह पहुंचता है, सारा गांव वहां पर खड़ा होता है, वो लकीर होती है और वो अपनी यात्रा को आरंभ करता है। थोड़ा सा भोजन भी लेता है और थोड़ा सा पानी की बोतल, और भागना चालू करता है। क्योंकि जितना वो भागेगा, जितनी जमीन वो कवर करेगा, वो सब उसकी होनी थी। भागने लगता है, परंतु एक शर्त थी, सूर्यास्त से पहले वहीं पर पहुंच जाना है जहां से वो निकला। वो भागना चालू करता है, भागता है, भागता है, भागता है, सोचता है भागते भागते ही भोजन कर लूंगा, क्योंकि रुका तो जमीन कम मिलेगी। भागता है, भागता है, फिर सोचता है भोजन तो सारी जीवन भर कर ही लूंगा, बाद में भागते भागते भी क्यों टाइम वेस्ट करूं, भोजन को फेंक देता है। फिर भागता है और हाफता है, और भागता है और हाफता है, सोचता है और भागू और भागू, सोचता है प्यास लगी है पानी पी लूं, पर समय जाएगा, पानी भी फेंक देता है, सोचता है बाद में पीऊंगा। बीच में सूर्य आ जाता है, सोचता है अब वापस चलना चाहिए क्योंकि पहुंचना भी तो है। परंतु सामने की जमीन थोड़ी ज्यादा हरी दिखती है उसे, सोचता है थोड़ा सा और भागता हूं, फिर भागता है, फिर भागता है, फिर भागता है। एक बजता है, दो बजते हैं, सोचता है अब वापस चलना चाहिए, परंतु सामने की जमीन थोड़ी ज्यादा ही सुंदर लग रही है अभी तो, और उर्वर, ऐसी उपजाऊ जमीन फिर कहां मिलेगी, सोचते हैं और थोड़ा भागू, और भागता है और भागता है और भागता है। फिर तो ऐसा समय आता है, सोचता है अभी अगर लौटा नहीं तो पहुंच ही नहीं सकूंगा, लौटता है और फिर अब तो उससे चला ही नहीं जाता है, फिर भी भागता है, भागता है, क्योंकि पहुंचना है। और उसे फिर एक समय आता है कि गांव के लोग इंतजार करते हुए दिखते हैं, परंतु इधर सूर्यास्त हो रहा है और भाग रहा है, भाग रहा है। अब बस कुछ ही गज जमीन बाकी है और सूर्यास्त जैसे ही होता है धड़ाम से नीचे गिरता है और मर जाता है। गांव वाले कहते हैं आज एक पागल फिर मर गया। साधनों की दौड़ ऐसी ही दौड़ है, आज ये है कल और चाहिए, कोई भी साधन हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, मनुष्य का मन अतृप्त सा रहता है, कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, उसे कुछ और चाहिए। परंतु ये साधन कभी भी हमें खुश नहीं कर सकते, हाँ उनका प्रयोग करना, पर अनासक्त भाव से, ज्ञान और योग के लिए, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। नहीं तो हमारी भी स्थिति इस व्यक्ति की तरह हो जाएगी। तो ये था साधन, जितना भी माया का डिजिटल स्वरूप है इस समय, डिजिटल माया, इलेक्ट्रॉनिक माया, उसको पहचानना है। अभी सभी 5-10 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे। ओम शांति।